अब क्वेश्चन अगला क्या है, हम सीखने लग गए, कोई 1 साल से कुरान सीख रहा है आप में से, कोई 2 साल से, कोई 5 से, ऐसे ही है ना। यानी आप जितनी सिस्टर्स हैं इनमें मेरा 80% सिस्टर्स कुरान सुनती हैं, किसी मस्जिद में जाके सुनती हैं, किसी कोर्स में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, आप व्हाट्सएप से सुनते हैं ना। मेरे चंद सवाल हैं आप समेत खुद से, क्या आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है? पता चल गया ना, अल्लाह की क्या पसंद है और क्या नापसंद है नहीं पता चला? अल्लाह की चॉइस क्या है वो और आपकी क्या नहीं, सब पता है ना। तो सवाल पैदा होता है, अब हमें कुछ लोग ऐसे इनविटेशंस देते हैं, हमारी फैमिली के हो सकते हैं, हमारे नेबर्स में, हमारे हस्बैंड्स की जॉब में या बिजनेस के कोई पार्टनर्स होंगे, अब उन्होंने आपको मुझे कोई ऐसा इनविटेशन दिया जिसको देखकर सुनकर उससे पूछकर पता चला कि यह अल्लाह की नाफरमानी का काम है। आते हैं ऐसे इनविटेशन? मुमकिन है, कोई अबस बात तो नहीं है ना। अब हम क्या करें? देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसलिए देना चाहती हूँ कि जिससे फिर अमल के रास्ते आसान हो जाते हैं। अमल के बग़ैर ज़िंदगी बेअमल है, कह लीजिए कि ज़िंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी जो कैफियत है वो क्या है? किसी सोसाइटी में चेंज कौन लोग लाएंगे, या आप लिख लीजिए अपने ऊपर, किसी सोसाइटी में चेंज उन लोगों की वजह से आता है जो गलत चीज़ को गलत समझकर फिर स्टैंड लेते हैं कि मुझे चूंकि ये बात पता है ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये नाफरमानी की है, इसमें अल्लाह की नाराज़गी होगी, तो सॉरी मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती। हमारे दीन में जो अकीदे की बुनियाद है ना, और अकीदे की बुनियाद ऐसी है जैसे इस बिल्डिंग की फाउंडेशन, बुनियाद हिल जाएगी तो सारी इमारत गिर जाएगी। अकीदे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बिग पोर्शन ऑफ द अकीदा क्या है? अलविला वलबरा, अलहुब्बु फिल्ला वलबुग्जु फिल्ला। आज ये सबक सीख लें बस, और कुछ ना सीखें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे लोग और बहुत कुछ सिखाएंगे, लेकिन आज यहाँ से उठने से पहले एक बात समझ और सीख कर मैंने आपने जानी है, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग्ज़, ये क्या होता है? अगर इसको समझ गए क़यामत के दिन हिसाब बहुत आसान होगा। अल्लाह के लिए मोहब्बत क्या है? मसलन बिलाल हबशी, काले रंग के हबशी ग़ुलाम, कुरैशी भी नहीं थे, शक्ल भी काली थी, लेकिन क्या उस बिलाल को खाना काबा की छत पे खड़े होकर अजान देने का मौका मिला? मिला ना, कि हज़रत बिलाल को लोग कहते थे सैयदना, हमारे सरदार आ गए, आइए सैयदना अजान दीजिए, इतना प्यार करते थे। खून का रिश्ता नहीं है। अब वो अय्यूब अंसारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले होस्ट, मदीना जब आपकी सवारी उतरती है हर घर में ख्वाहिश थी कि हम इनके होस्ट बने, वाकया आपने सुना होगा, हर घर चाहता था कि नबी सल्लम हमारे पास ठहरे, क्योंकि आप एक कायद एक लीडर के तौर पे जा रहे थे। और अबू अय्यूब अल अंसारी जो एक गरीब सहाबी थे, बाकी सब लोगों की निस्बत एक बिल्कुल मफलूकुल हाल थे, अपनी बीवी से कहते हैं मेरे भी दिल में ख्वाहिश है कि मक्का से जो सरदार आ रहा है वो हमारे घर ठहरे। तो बीवी कहती है अब क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े सरदार हों, साद बिन माज, असद बिन जरारा, इतने बड़े बड़े सरदार हैं, उनको छोड़कर भला अल्लाह के नबी हमारे घर क्यों आएंगे? लेकिन जब तलब सच्ची होती है, तड़प होती है, आपने वाकया पढ़ा होगा, अल्लाह ने अबू अय्यूब अल अंसारी ही के घर के आगे ऊँटनी को रुकवा दिया। बात समझ गए? अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आके ठहरते हैं, क्या रिश्ता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अल अंसारी के घर क्यों ठहरे? अलहुब्बु फिल्ला, अलहुब्बु फिल्ला। और नबी सल्लम की दो बेटियाँ, अबू लहब के दो बेटों के साथ ब्याही हुई थी, मैरिड थी। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का दीन दिया, पैगाम दिया, तब्दीली आई, बहुत बिग चेंज था माशरे में, लोग आपके दुश्मन हो गए, एक एक करके दोनों को तलाक दिलवा दी अबू लहब ने अपने बेटों से कि नबी को सदमा मिले अपनी बेटियों का। उनको क्या पता कि उधर से तलाक अल्लाह ने इसलिए दिलवाई कि इधर से दोनों उस्मान की ज़ौजियत में आ जाए, ज़ुन्नौरैन बना दें। ये अल्लाह के नबी का क्या था? अलबुग्ज़ु फिल्लाह। याद रखिए, जब सच्चा दीन आएगा माशरे में कुछ रिश्ते जुड़ेंगे, कुछ टूटेंगे, और एक बिग चेंज ज़रूर आएगी सोसाइटीज़ में, दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी ये पैसेज नहीं आया तो अभी आप बड़ी दूर हैं। हम क्या चाहते हैं? गलत चीज़ें ना छूटें, لوگ ناراض نہ ہوں, لوگ مائنڈ نہ کریں, ہمارے تعلقات ان سے نہ بگڑیں. ہاں کوئی بات نہیں, جا کے دو نفل ایکسٹرا پڑھ لیں گے, آج رات کو ایک سپارہ اور بھی پڑھ لوں گی, ایک عمرہ بھی کر آئیں گے, کوئی 100,000 10,000 صدقے میں بھی دے دیں گے. اس سے بات نہیں بنتی. صحابہ کرام اس بات میں اتنے سچے تھے کہ جب اللہ کا نام آ جائے پھر دنیا ساری پیچھے. غزوہ بدر کا موقع تھا, اس کے بعد جب باپ بیٹا جمع ہوتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ڈے ون سے اللہ کے نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے, ایک بیٹا بھی مسلم نہیں تھا. غزوہ بدر ہو گئی, جنگ ختم ہوتی ہے, بیٹا آ کے باپ کو کیا کہتا ہے, ابا جان آپ کو پتا کہ جنگ میں 2-3 بار ایسا ہوا کہ آپ بالکل میری تلوار کی زد میں تھے, کیونکہ بیٹا کافروں کی طرف سے اور باپ مسلمانوں کی طرف سے, آپ میری تلوار کی زد میں تھے پر میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا. کہا اچھا بدبخت, میں تو میدان جنگ میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ کب تو مجھے ملے اور میری تلوار تیری گردن پہ چلے اور میں اللہ کو کہہ سکوں کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کیا ابو بکر کو اپنے بیٹے سے نفرت تھی؟ وہی بیٹا بعد میں مسلم بھی ہو گیا. یاد رکھیے صحابہ اس بات میں بڑے سچے اور کھرے تھے. غزوہ بدر ہی کا موقع اور بدر کے قیدی جمع ہو گئے. آپ نے مشورہ طلب کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے, کیونکہ پہلی جنگ تھی, پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا کرنا ان لوگوں کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق رقیق القلب تھے, نرم طبیعت کے تھے. کہا اللہ کے نبی ان کو مار کے ہمیں کیا ملے گا, ابھی نیا نیا کام ہے, اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے, ہم ان کا فدیہ لیتے ہیں اور وہ پیسہ اسلام کی ترویج میں کام آئے گا. اللہ کے نبی کا بھی یہی ملان تھا. خیر ابو بکر کے بعد عمر کی باری آتی تھی ہمیشہ. عمر آپ کی کیا رائے ہے, یہاں سنیے گا حضرت عمر کا مشورہ کیا تھا. کہا اللہ کے نبی میری تو یہ رائے ہے کہ ان کفر کے سرداروں جن کے سروں میں اسلام کے خلاف سازشیں ہیں, یہ تو گھر سے ہمیں مارنے آئے تھے نا, یہ تو ہم بچ گئے, میرا مشورہ ہے کہ ان کو ختم کر دیں, کیونکہ اگر آج آپ نے ان سے پیسہ لے کر ان کو واپس کر دیا, یہ وہاں پھر فتنوں کے سیام دوڑائیں گے اور پھر آ جائیں گے. اور بلکہ میرا مشورہ یہ ہے, یہ جملہ جو سونے کے پانی سے لکھ لیجئے, میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کے حوالے کیا جائے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کی گردن پہ چھری چلاؤ. کیوں؟ اللہ دیکھ لے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کیا ہے. اور اسی جنگ میں حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا. یہاں مجھے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہم کوئی جنگوں میں نہیں ہیں, ہم تو خوشیوں اور غموں کے میدان میں ہیں. چلیے دور کیوں جائیں, ہمیں دوسروں سے کیا لینا, آپ اپنے گھر سے بات شروع کریں. آپ کو اللہ نے دین دیا, آپ کی زندگی میں قرآن آ گیا, آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھ لی, سورۃ آل عمران بھی پڑھ لی, سورۃ نساء پہ پہنچ گئے, سورۃ الاعراف پہ پہنچ گئے. آپ کو ایک ایسی دعوت ملتی ہے جو آپ کے سگے بھائی کے گھر سے ہو سکتی ہے, سگی بہن کے گھر سے ہو سکتی ہے, سسرال سے ہو سکتی ہے, قریب سے قریب رشتہ سوچ لیجئے. آپ وہاں آپ کو انویٹیشن ہے. پہلی تو بات آپ خوش ہوں, اب کیا کریں. میں سٹیپس میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جب آپ کے پیاروں کی زندگی میں کوئی خوشی کا موقع ہے, یعنی آپ کے بہن بھائیوں کے بچوں کی شادی ہے یا کچھ بھی ہے, اب ہمارے ہاں شادی کلچر بن گئی اس لیے اس کی مثال آسان لگتی ہے, سب سے پہلی بات ہے خوش ہوں, دعا دیں ان رشتوں کے جنت تک ہونے کا, آپ اللہ سے دعا کریں اور ان کو بھی اس کی بھرپور قسم کی دعا دیں. بلکہ اس سے پہلے ہی اپنے بھائی بہنیوں سے بیٹھ کر یہ بات ڈسکس کریں کہ دیکھیں بیٹے بھائی رشتوں کے موقع قریب آ رہے ہیں, تو بچوں کے رشتے دین کی بنیاد پہ کیجیے گا. آپ کی اتنی نیک بچی ہے, آپ اگر اس کو کسی مشرک یا بے نمازی کے حوالے کر دیں گے تو اس کا دین مشکل میں پڑ جائے گا. اور سیم بات ہے کہ صرف حسن کی پری نہ لے آئیں اپنے گھر میں بہو کے نام پہ, ذرا دیکھیے وہ آپ کے آنے والے بچوں, آپ کی نسل کی ماں ہوگی. پہلے تو ان کو تذکیر کیجئے, رشتے ڈھونڈیں تو یہ باتیں ڈھونڈیں. دوسری بات دیکھیے کہ رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر پکا ہونے, پھر منگنی کے بعد ڈیٹ فکس ہونا, ڈیٹ فکس کے بعد مہندی, مہندی کے بعد پھر کچھ اور, پھر دعوت, پھر شادی. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے کر چکے ہوں گے اور ساتھ ہی ان کو یہ بتا دیں کہ شادی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے, خوش ہوں, آپ بھی خوش ہوں, اچھے کپڑے بنائیں, آپ کی حیثیت ہے, آپ بھی اچھے کپڑے بنائیں, زیور بنائیں, جو حلال میں اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو استعمال کریں, اللہ اسے مائنڈ نہیں کرتا. لیکن مسئلہ کیا ہے, جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے نافرمانی ہے. کیا مسئلہ؟ مثلا جیسے میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کیا کریں, پھر آج کل مکس گیدرنگ ہوتی ہے, دوسری بات ہے شادیوں میں عموماً میوزک ہوتا ہے، شاید ادھر نہیں ابھی ہوگا، میرا کافی گمان ہے کہ گوجرانوالہ خاص طور پہ جو ماشاء اللہ علمی اداروں کی ماجگاہ ہے، مسجدیں بھی ادھر زیادہ ہے، قرآن سنت کا کام کرنے والے بھی ادھر ہیں، ریئلی میں اپنے دل سے کہ سمجھ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کی شادیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، مجھے تو کوئی ابھی ادھر کی دعوت آئی نہیں ہے، کل شادی اٹینڈ کی اس میں تو کچھ نہیں تھا الحمدللہ، ادھر کا مجھے نہیں پتہ، میں تھوڑا سا باہر جاؤں گی لاہور میں جا کے یہ بات کہوں گی تو مجھے تھوڑا سا گمان ہوگا کہ 50-50% شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوگی کہ نہیں، لیکن میں آپ کو جہاں سے آئی ہوں ویسٹ میں رہتے ہوئے ہم نے اور اپنا کچھ نہیں چھوڑا، کھانے بھی وہی کھاتے ہیں، جلیبیاں بھی وہاں بہت کھاتے ہیں، ہم لوگ بریانیاں بھی بہت کھاتے ہیں، ہم نے سب کچھ اپنے ملک نمک مرچ مسالے شان مسالے گوشت فریش سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن ہم نے جو چھوڑ دی ہیں وہ نبی کی سنتیں چھوڑ دی، تصور ہی نہیں ہے اب کہ مکس گیدرنگ کے بغیر شادی ہوگی، میوزک اور کیا جی آپ نہیں نہیں بچوں کی خوشی ہے، اور دوسرا ظلم اور ستم کیا بچوں کا نام لیتے ہیں، یہ میرے بیٹے کی خوشی ہے، پہلے دور سے ہم سب بچپن سے ایک چیز سنتے آئے کہ جی بیٹے والوں کی بات مانی جاتی ہے، یہ بھی ایک الگ کلچر تھا، اس کو نہ ڈسکس کریں، اب کیا بیٹی والے نہیں مانتے، بھئی آپ کا بیٹا آپ کا کیا نہیں، وہ ہم نے تو کوشش کی تھی لڑکی والے نہیں مانتے، کیا ہم مسلمان آپس میں ہی ابھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں، دشمنوں سے کس نے لڑنا، اسلام کے بارے میں غیر مسلموں سے جہاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کیا میں صرف اپنے بھائی بہن اپنے قریب کے لوگوں کی اتنی سی بات پہ نو نہیں کہہ سکتی کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو سوری ٹو سے دیٹ، پھر مجھ سے زیادہ امیدیں نہ رکھیں آپ، جب مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے سے شرماتا ہے اور دوسروں کو نو نہیں کہہ سکتا تو آپ ایک لاکھ بار کہیے لا الہ الا اللہ، لاکھ کے ساتھ تسبیح شروع ہوتی ہے، لا نگیشن ہے، لا کہیں گے تو اللہ سمجھ آئے گا، ہم کہتے ہیں دنیا بھی خوش رہے اللہ بھی خوش رہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی، اگر مکہ والوں کے سارے طور طریقے رسم و رواج ان کے کلچر کو ہی آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوتا تو اس کے بعد یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کو مکہ والے کبھی نہ نکالتے، وہ تو ان کے پاؤں دھو کے پیتے، صادق اور امین تو پہلے ہی کہتے تھے، اتنا بڑا جہاد جو مکہ سے مدینہ جانے کا اور ہجرت کا مرحلہ کیوں آیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کی غلط چیزوں پہ نو کیا، لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ الدِّينِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، دیکھیے ایک جملہ جا کے کھولیے گا سورۃ کافرون، کھول لیں سامنے، لا أعبد ما تعبدون، وہاں لفظ عبادت ہے اس کو بدل لیجئے، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ پکے رہیں، آج دشمنوں کے بولنے سے نہیں اپنوں کے چپ رہنے سے دین کو نقصان ہو رہا ہے، آپ ایک شادی یا ایک ایسے فنکشن پہ نو کہیں مسئلہ کے حکمت سے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی، اس جگہ جا کے نہیں شور کرنا، وہاں جا کے عورتوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں دینے، وہاں جا کے واضح اور تقریر نہیں کرنی، اس کا وقت یہ تھا، اپنے پیاروں کو پہلے سے رکھے، آپ کو لگ رہا ہے شادی ہونے والی ہے 6 مہینے 3 مہینے 4 ماہ رہ گئے، ایک دن جائیں ٹائم لیں بیٹھے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، شادی کیسے کرنی ہے، اس میں کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، دیکھیے اگر ہماری خوشیوں میں نافرمانی ہے مجھے آپ بتائیے پھر ہماری خوشیوں میں برکت کہاں سے آئے گی، پھر میں کہوں گی کہ میرے فگرز یہاں کے اپڈیٹڈ نہیں ہیں، الحمدللہ یہاں خیر ہی خیر ہوگی، ہر 3 میں سے 1 شادی ٹوٹ رہی ہے ویسٹ میں، 3 میں سے 1، آپ ڈائیورس ریشو کھول لیجئے، یہ پچھلے سال کی بات بتا رہی ہوں، مسلمس اور نان مسلمس کی ڈائیورسز میں بیگ فرق تھا آج سے پچھلے 5-10 سال پہلے تک، لیکن اب ویسٹ میں جس ملک کی میں بات کر رہی ہوں مسلم اور غیر مسلم ڈائیورسز کا ریشو بڑھ گیا ہے، برابر ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے شادیوں کے موقع پہ نافرمانی کی، ایک بالکل کہہ لیجئے کہ آنکھوں دیکھا نہیں لیکن جن کے ساتھ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا شادی سے اگلے دن طلاق ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، شادی کے تیسرے دن 4th دن 1-2 مہینے، کبھی آپ میں سے کسی نے اپنی اتنی زندگی میں شادی والے دن طلاق ہوتے سنی، اور یہ ریئرلی ہمارے اپنے جن کو میں نہیں جانتی لیکن جو ہمارے اپنے ساتھی ہو جانتے ان کے ساتھ یہ ہوا، شادی ہے ویسٹرنائز ماحول ہے اور شادیوں میں کیک کاٹنا وہاں بہت ہی ایک لازمی ہے، ویڈنگ کیک کہتے ہیں، سب کچھ کر کے اینڈ پہ کیک کٹتا ہے، لڑکے کی ماں جو بڑے چاو اور مان کے ساتھ شادی کے لیے لڑکیوں کو مطلب لے کے جاتی ہیں، کیک کا ٹکڑا اس نے خوشی میں محبت میں بہو کے منہ میں ڈالنا چاہا، اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ کیک اس ساس کے ہاتھ سے گرا اور لڑکی کے کپڑوں پہ گر گیا، اس نے وہاں بدتمیزی شروع کی، اس نے ساس سے منہ ماری کی، क्योंकि उसकी तो सारी मेहनत जाया होगी, जिस दिन के लिए उसने लाखों रुपया लगाया था वो तो सारा उसका गेटअप खराब हुआ। जो ही उसने अपनी सास के साथ बदतमीजी की, लड़का जो शौहर था वो भी था, वो वहां से आया स्टेज पे चढ़ के, सबके बीच में उसने खड़े होके कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तुमने मेरी माँ के साथ ये कि ये वाक्य मैंने आपको फैब्रिकेटेड नहीं बताया। पीछे क्या है? इश्तहा, ख्वाहिशात है, लाइफ स्टाइल। हम लाड करने के नाम पे ये काम करते हैं, बाद में नुकसान होते हैं। याद रखिए, बेबरकती होती है जब अल्लाह की नाफरमानी होती है। और ऐसी भी कहानी मौजूद है कि शहजादों जैसा लड़का और शहजादियों जैसी लड़की, यानी जिसको घुबरू लड़का कहते हैं, और शादी के 1-1.5 महीने के बाद लड़के को ऐसी तकलीफ है कि वो खड़ा ही नहीं हो रहा, पाँव में प्रॉब्लम है। 6 माह साल हो गया शादी को, वो लड़का बेड पे है, कोई वजह नहीं डॉक्टरों को समझ आती, लेकिन माँ कहती है कि मुझे लगता है कि इनको नज़र लगी है, लग जाती है नज़र। आप सर से पांव तक तो अपने एक्सपोजर में, मुझे बताइए शादी से ज़्यादा किस दिन आप सजदे संवरते हैं? ये तो शुरू से रिवायत रही, कहते हैं परांदा भी उसी नहीं आता है, मोज़े भी लड़की ने नहीं पहने होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप नेमतों का इतना एक्सपोजर करके जो सजा के बैठाते हैं 1,000-2,000 बंदे में, क्या ख्याल है सारे खुशी से देखते हैं आपकी चीज़ों को? देखिए मैं आपको माजरत के साथ, चलिए आपने एक शादी में 1,500 लोगों को इन्वाइट किया, 500 आ गए लड़के वालों के साथ, 2,000 की गैदरिंग। अल्लाह जानता है आपने जिन 15,000 गुस्सों को किया ना, उसमें 1,000 लगा दे मिलने में लाने वाले, उनसे आपको, आपसे उनको कोई बैर नहीं है, वो आपके टर्म्स हैं। इन 500 में से जिसको आप फैमिली के लोग कहते हैं, मैं माजरत के साथ कहती हूँ, उन 500 में से 50 लोग ज़रूर ही उस वक्त आपसे दिल से नाराज़, दिल में हसद, कीने, कुछ और तमन्नाएं लेकर बैठे होंगे। वहाँ वो भी माएँ बैठी होंगी जिनकी ख्वाहिश थी कि आप अपना बेटा उनकी बेटी को देती। अब आपने रिश्ता नहीं लिया उधर, ठीक है, अब आपकी बहू आई, क्या वो 50 औरतें आपकी बहू को प्यार से देख रही हैं? वो तो जल के देख रही हैं, वो तो हसद से देख रही हैं, वो तो दिल में बुरे जज्बात रख के देखेंगी। इसी तरह दूसरी तरफ भी कहानियाँ होंगी, हमारे रिश्तेदार हमारी खुशियों पे अंदर से खुश नहीं होते मोस्टली, मानिए ना मानिए, इल्ला माशाल्लाह, गैरों को भी लेना नहीं। अब जिसने आपको देखा, आपकी बेटी को देखा, आपके बेटे को देखा, आपको देखा, किसी ने हसद से देखा, किसी ने जलन में देखा, किसी ने तकाबुल में देखा, किसी ने आह भर के देखा, चलिए ये तो आपके डायरेक्ट लोग थे जिनसे आपका कोई ताल्लुक था। अब उस शादी में 1,500 में से कम 500 माएँ या बाप वो होंगे जिनके अभी बच्चों बच्चियों के रिश्ते ही नहीं हो रहे, वो क्या कह रहे हैं, इनकी बेटी का बड़ा अच्छी जगह हो गया, हमारा नहीं हुआ, वो इस जलन से बैठे हुए वहाँ, हाय इनकी बेटी के कितने अच्छे कपड़े आ गए, इनको जेवर पड़ गया, डायमंड मिल गए, वो नहीं हुआ, और बाकी 500 अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ रहे होंगे। यकीन करें, आप मानिए ना मानिए, सच्चे इस्लाम और दीन के प्यार के अलावा हर रिश्ते में शक हो सकता है। अब आपने एक्सपोजर भी किया, आपने माशाल्लाह करोड़ों रुपए भी लगा दिए उस शादी में, आप रिस्क लेकर आए। हमारा जेवर किधर होता है? अमूमन लॉकर्स में। हमारा पैसा किधर होता है? बैंकों में। ऐसे ही ना, घर के मुलाजमों को पता लग जाए जेवर किधर है, और आपके अपने ही बच्चों को पता चल जाए कि अब्बा के बैंक में कितना पैसा है, आप देखिए अगले ही दिन चोरियां चकारियां शुरू हो जाए। जब दौलत और जेवर बैंकों और उधर लॉकर्स में है, तो हमारी जो खूबसूरतियां हैं, जो हमारी हुसन है, जो हमारी दुनिया की, उसका एक्सपोजर क्यों है? बात समझने की। इस सारी बात को अगर मैं इधर ही स्टॉप कर दूँ ना, नो कहना सीखें। अगर आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती ना, जाइए शौक से जाइए, दुआ करें कि अल्लाह आपको बुराई और अच्छाई में फ़र्क दे दे। अल्लाह मारिन अलहक हक वरजुक न इतबाह वारिन अलबातिला बातिलन वरजुक न इजतनाबाह। लेकिन लेकिन जो मैसेज मेरा आपके लिए था, आप जब किसी चीज़ को बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं, फिर नो कहना सीखें। चाहे तकाबुल में शौहर प्यार से बात कीजिए, कोई खुदा न खास्ता हमारी बेदीनों से तो शादी नहीं हुई, कोई काफिर तो नहीं है, मुनाफिक तो नहीं है, हमारे माँ बाप ने अपने गुमान के मुताबिक बेहतरीन मुसलमान से हमारी शादी की है। कि मियाँ साहब 100 बातें आपकी सर आंखों पर, ये नहीं है, और एकदम जाके झटका देने के बजाय पहले जहन साजी कर लें। आप अपने तौर पर अपना अमल अपने घर से शुरू कर दें कि मैं ऐसे किसी मौके पर नहीं जाऊँगी, मैं मिक्स गैदरिंग में नहीं जाऊंगी, मैं म्यूज़िक में नहीं जाऊंगी। आप ऐसा स्टैंड लेकर देखें, ज़ुबान खामोश। हमारा मसला ये कि हम गिफ्तें शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं हम कहें ताकि लोग हमें कहें, नहीं नहीं आप चलें तो हम फिर चले जाएं। पहले दुआ करें, वो सारी इस्लाह की कोशिशें कर चुके हों। उसके बाद जहाँ आपको नहीं जाना या आपको लगता है कि इस वक्त तो वो आप बदल ही नहीं सकते, देखिए ना वो तो बेचारे 6 माह से हॉल की ढूंढा ढांडी और तैयारियों में लगे हुए, वो वहाँ खड़े खड़े सेटअप बदल सकते हैं, लेकिन फिर आप झूठ ना बोलें। मैं क्या करती हूँ, मिसाल है किसी की दावत आती है, चलिए जी आ गई, डायरेक्ट उसी से जिसके घर काम है, आपसे नहीं पूछूंगी, आपसे उनका नंबर ले लूँगी जिनकी शादी है, फिर मैं उनसे बात करूँगी, मुझे आपका इनविटेशन मिला, बहुत शुक्रिया, दुआ दूँगी जो अल्लाह के नबी ने सिखाई है, फिर उसके बाद मैं कहूँगी कि आपने मुझे बुलाया, मेरी भी ख्वाहिश आने की, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। पहली बात यह है कि मैं किस तरह आऊँ, मैं अक्सर क्या पूछती हूँ कि मैं अच्छे कपड़े पहन कर आऊँ या बाय में आऊँ, क्या मतलब, मैंने कहा अगर मिक्स गैदरिंग है तो फिर तो मैं किसी भी रूप में चली जाऊँ, मुझे तो अपने घर वालों को तो मैंने जिस वक्त भी पहन के दिखाने में दिखा दूंगी, तो फिर वो कहेंगे हाँ नहीं ऐसा नहीं है वो, अच्छा हम आपके लिए अलग से पर्दे का अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है जी आप एक साइड पे बैठ जाइएगा, हम आपको कर देंगे, ये है वो है, बस ये है वो है, अच्छा जी ठीक है, इस फाइन नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है कि वहाँ म्यूज़िक तो नहीं है, हाँ नहीं वो म्यूज़िक नहीं, अगर म्यूज़िक है मिसाल है वो कहते हैं, तो फिर आप झूठ ना बोलें, हम बहाने करते हैं, नहीं काम बड़ा है, नहीं अभी कहीं जाना था ये, तो फिर और फिर उन्हें कहें कि मैंने आना था, लेकिन मैं ऐसी जगह पे जाती क्यों, इंजॉय करने। देखिए ना आप सच बताएं, जब शादी पे हम जाते हैं हम खुश होने जाते हैं ना, अच्छे कपड़े खाने तो हम रोज़ ही अच्छे खाते हैं माशाल्लाह, कपड़े भी रोज़ ही अच्छे पहनते हैं, लेकिन एक बनी हुई ट्रेडिशन, ऐसी जगहों पे बंदा जाते खुश होने। अब आप कहीं गई, भवें आपकी तन रही हैं, धमाका शोर है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आप वहाँ खुश होंगे, आप खुश होकर नहीं आएंगे। अगर अल्लाह ने आपका मिजाज बदल दिया है ना, टेस्ट चेंज कर दिया है, तो आप कभी ऐसी जगह में 3-4 घंटे देकर खुश नहीं आएंगी। तो आप उन्हें कहें कि मेरी तरफ से फिर माजरत है, मैं ऐसी जगह से फिर अपसेट होकर निकलूंगी, मैं दुखी होंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जाऊँगी, बताइए उनको मैं इसलिए नहीं आऊँगी। और कई दफ़ा क्या होता है कि सारी पेशबंदियों के बावजूद जब जाएँ तो वहाँ फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, घर वाले को मिलें, प्यार से बात करें, सलाम करें, जो गिफ्ट देना लेना है, वैसे तो शादियों पे गिफ्ट्स का भी कोई चक्कर नहीं, ये भी एक इशू मैंने अपने दिल में सोचा हुआ था कि आज जो हमारा शादी कल्चर बन गया है, ये आप मेरे जैसों के लिए हो सकता है बड़ा आसान हो, इंजॉइंग है, हर हफ्ते में 3 दिन जाते हैं, 5-5 हज़ार की एक सलामी दे आते हैं और साथ कुछ और 2-4 हज़ार लगा के 10 हज़ार में एक शादी खा आते हैं, एक मतवसत तबके का रिश्तेदार हमारा आज, हमारे ही जैसे इज्जतदार सफ़ेद पोश लोग भी होंगे, मुझे बताइए वो अब शादियों में कम से कम क्यों नज़र आते हैं। मैंने पूरे इस पर तज़िया किया है। पहली बात है वो कहते हैं कि शादियां रात को होती हैं, अब तो देर सवेर वाली बात ज़रा कम हो गई है, और रात है तो सर्दी है, ये है बच्चों के साथ कैसे जाएं, गाड़ियां नहीं। दूसरी बात है अब शादियां होने लगी दूर हॉल्स में, मार्की है, ये है वो है, अब वो इतनी दूर है वहाँ हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह क्या है, लेन देन। कहते हैं कौन हर शादी में 5 से 10 हज़ार रुपये दे तो फिर शादी खा कर आए। देखिए आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या मुझे मौके का इंतज़ार करना चाहिए कि आप स्टेज के पास खड़ी हैं और मैं जाकर आपके हाथ में लिफाफा दूँ। कितने सानहे होते हैं कि लड़कियों और लड़कों की माओं के पर्स चोरी हो जाते हैं, गिफ्ट बैग दे रहे हैं तो वो गिफ्ट बैग इधर से उधर होगा, उस वक्त कोई अक्लमंदी है जो लड़की की माँ या लड़के की माँ खुद जाके दूर जाके बैठ के शादी खाने के मूड में आप जाके उसको गिफ्ट पास कर रहे हैं। यानी ये कल्चर भी ख़त्म करने की ज़रूरत है कि शादी वाले दिन या शादी के मौके पे तोहफा दो तो शादी खाओ, नहीं तो ना खाओ। वजह आप पहले दे दें, आप बाद में दे दें, ये भी रस्में हैं। देखिए तोहफा क्या होता है जिसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और रस्म क्या होती है जिसमें पहले से उम्मीद लगाई होती है कि हम वो दे के आए थे अब ये देंगे। तो ये जो शादी के तोहफे तोहफ़ है ना, इसको भी अब हमने रस्मों में नहीं बदलना। बस आप लोग कहते हैं इस रस्म को कैसे ख़त्म करें, मैं कहती हूँ बहुत आसान है, आप जाइए किसी के घर शादी पे कुछ ना दें, पहली बात अगली दफा आधे लोग बुलाएंगे आपको कि इन्होंने तो कुछ दे के नहीं आना। दूसरी बात है आपका क्या वो आखिरी और पहला मौका था उनसे मिलने का, आप घर में जब कभी जाएं प्यार से मोहब्बत से दे दीजिए गिफ्ट है। आज हमारी शादी का कल्चर इतना बोझल है, मैंने लोगों की आहें देखी हैं, वो कहते हैं फिर चुप करके हम घर बैठ जाते हैं, हम वहाँ जाएंगे फिर जहाँ जाएंगे तो कपड़े भी पहनेंगे। अब एक जोड़ा आज 10 हज़ार से तो नीचे से शुरू होता है बॉटम लाइन, तो 10, 20, 25, 30 हज़ार का एक जोड़ा आप बना लें कोई बड़ी बात नहीं, आप मेहनत करके मियाँ से पैसे ले दे के 25 हज़ार का जोड़ा बना लें तो फिर हर शादी पर पहने। फिर भी वो कहते हैं नहीं, कल इस टर्म में मैंने एक सुना कि रिपीट नहीं होता, मैंने मुझे समझ नहीं कि रिपीट क्या होता है, मुझे बाद में पता चला कि जोड़ा अब रिपीट नहीं होता, मैंने कहा जोड़े की रेपिटेशन से क्या मुराद है? कहने लगी एक शादी में जो पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनना। मैंने कहा वो क्यों? कहती वो सब देख चुके होते हैं। तो मैंने कहा फिर? कहते नहीं फिर दोबारा पहनेंगे तो वही लोग होंगे तो फिर रिपीट नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर आपका जोड़ा कोई दूसरा पहन ले, दूसरे का जोड़ा तीसरा पहन ले। अब ये इतना बड़ा महाज है, आप यकीन करें आज घर जाकर कागज़ कलम लें और उस पर लिख कर देखें। अपने ऊपर ना लीजिए जिनके घरों में अल्लाह की रहमत है। सबसे गरीब है उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखता, मासियाँ उनसे तो कोई नहीं मांगता, लेकिन जो इस वक्त बिटवीन तबका है ना वो पिसरा, खुशी के मौके पे गम है। हम अपनी इन शादियों को बरकत की बजाय परेशान है, ये वजह है कि आज हमारे घरों में बेसकूनी है। शादी के बाद ज़रूरी कोई ना कोई मसला लगा रहता है, हर शादी के साथ लड़ाई ज़रूरी है। कहते हैं ना कि शादी में दो तीन चीज़ें होती हैं, एक शायद होटल चाहिए, हॉल चाहिए, और एक नाराज़ रिश्तेदार भी चाहिए होता है जिसको मनाना है। और एक को आप मनाते हैं और दो आपके उस शादी पे नाराज़ हो जाते हैं। क्या मेरी आपकी ज़िंदगी का यही जिहाद है? इसी पे मैं अपनी बात आपको पूरी करना चाहूँगी। ये जो अभी मैंने जितनी बात की ना, ये ज़िंदगी की नेमत की बात की है। क्या मेरी आपकी ज़िंदगी का पिछला हफ्ता, उससे पिछला महीना, फिर उससे पिछला साल, क्या बड़ा कारनामा किया? एक हफ्ते में 3 शादियाँ खाई, ये जिहाद है। एक महीने में मैंने चले 10 खा ली या 4 खा ली, और एक साल में मैंने 20 शादियाँ खा ली, ये मेरी ज़िंदगी का अल्लाह को हिसाब दूंगी। इसके लिए मैं और आप आए थे? और वक्त क्यों नहीं मिलता, वक्त क्यों नहीं मिलता आपको? मुझे शॉपिंग, किसी ने मुझे कहा कि अभी शादी की डेट रखी है और स्टूडेंट्स गायब हैं क्लास से, 2 माह हो गए हैं वो अब कुरान क्लास में ही नहीं आ रहे, शादी अभी 4 माह बाद है, डेट रखने के बाद से वो आउट। बहुत बड़ा जिहाद हो गया आज हमारी शादियाँ। खुशियों में ना फरमानी है, देखिए इसराफ है, तबजीर है। हासिबु कबलन तो हासबु, वो कौम जिसके पास सड़कें टूटी हुई, जिसकी बिजली पूरी नहीं, जिसकी गैस पूरी नहीं, दुश्मन चारों तरफ से धमकियाँ देता है, जिस मुल्क में पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, जिस मुल्क में सफाई का भी इतना इशू है, क्या उस मुल्क में ये एक औरत को सजता है कि वो 1-1 लाख रुपये का जोड़ा पहन कर बैठे? हम हैं क्या? देखिए पहली बात, अपनी हस्ती को पहचाने। आप एक कपड़ा पहनते हैं पहले पूछिए कि आपकी वर्थ है इतने की? अल्लाह की नज़र में मेरा क्या मुकाम है? अल्लाह ने मुझे पता नहीं किस किस कैटेगरी में रखा हुआ है। और फिर जो अंदर टौर होता है, फिर जौकड़ होती है, फिर उस पर बनना, फिर ठनना, एक एक मेकअप कितने 40-50 हज़ार रुपये का सुबह पानी में जाता है। क्या एक कौम को इतना भी शऊर नहीं? अच्छा आप कहते हैं कि नहीं हम सदका भी बहुत देते हैं, तो फिर वही बात है कि सफाई भी करवाते हैं और साथ गंदगी भी डालते हैं। आज बैठ के सोचना है मैंने आपने, हासिबु कबलन तो हासबु, मेरा माल, मेरी एफर्ट्स, मेरी गाड़ी, मेरा घर, नेमते किस रास्ते में लग रही हैं? ये सब कुछ हो सकता है अगर लिमिट्स में हो, वंस अ वाइल, कभी कभार, फर्मा बर्दारियों में। शादी को मुश्किल नहीं है, इस मुल्क में जितने लोग हैं शादियां हो सकती हैं। पर एक और बिग इशू क्या है कि आप हमारी शादी में नहीं आए। जब से आई हूँ, 3rd-4th वीक है अभी, हर वीक में शादियां देख रही हूँ, इधर उधर लोगों की हैं, और हर शादी में मसला ही पड़ा होता है। कोई कहता है मुझे नहीं बुलाया, तो दूसरी बहन को बुला लिया, फिर वो एक रिसर्च वर्क शुरू होता है, कार्ड किधर है उसको ट्रैक करते हैं, तो वो ट्रैकिंग में पता चलता है इसका उधर पहुंचा हुआ था, उधर से आगे नहीं आया। अब वो नाराज, वो कहते फ़ोन कर देते भाजी आपका कार्ड तो भेजा हुआ था, पहुँच कर ले। तो मेरी यही इज्जत है कि मुझे कार्ड नहीं मिला तो मैसेज आ जाओ। और किसी का इशू क्या कि मुझे जी शादी से 1 दिन पहले कार्ड मिला। मुझे बताइए हम इतने अहम हैं? ये है मसले। नबी सल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा, इधर पीले रंग का निशान था, ज़ाफ़रान का। उस दौर की रिवाज था कि किसी की शादी होती थी तो वो खुशबू वाला रंग लगा लेता था, पता लग गया जी शादी हो गई है। आपने कहा कि अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहा लगे ने भी शादी कर ली। अच्छा हम होते, अच्छा जी मुझे बुलाया ही नहीं, मेरे से निकाह ही नहीं पढ़वाया, लो जी कुर्बानियाँ तो मैंने दी। नहीं, आपने एक जुमला बोला, अउलिम बिशाते। अच्छा वलीमा कर लेना, चाहे एक बकरी का ज़िबा करके कर दो। अगर हर शादी में नबी सल्लम इनवाइटेड होते और आपके ना जाने पे बहुत मसले बनते, तो वल्लाही ये 10 साल में मदीना में इतनी तरक्की नहीं होनी थी, ये तो फिर 100 साल का खाता था। आज मैंने आपने उम्मत मुस्लिमा की तरक्की को रोका हुआ है, क्योंकि अभी हम घर घर खेल रहे हैं, अभी हम अपनी ज़िंदगियों के इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। अभी एक नहीं ख़त्म होता प्रोजेक्ट तो दूसरा शुरू, उधर भी प्रोजेक्ट थे। एक तरफ अमन होता था तो दूसरी तरफ चल पड़ते थे, एक कबीला के ऊपर इस्लाम का पैगाम पहुंचाते थे तो दूसरे पे जाता था, दिन रात उनके भी प्रोजेक्ट थे, आज हमारे प्रोजेक्ट। किसी ने कहा कल एक शादी ख़त्म हुई, अब कल से दूसरी शुरू हो रही है। कल एक शादी के लिए लाहौर से सियालकोट 4 दफ़ा हफ्ते में गाड़ी गई है, तो अब अगली गाड़ी में हो सकता है सियालकोट वालों की गाड़ियाँ हफ्ते में 4 दफ़ा लाहौर आएंगी। क्या पानी से चलती हैं गाड़ियाँ? मुझे बताइए इस मुल्क में गुर्बत क्यों है, इतनी पोल्यूशन क्यों है। कल कहीं गुजर रहे थे, मैंने कहा आपका मसला ये है कि शहर छोटा है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, आप गाड़ी कम कर दें आपके शहर का रश ख़त्म होगा। सिंगापुर में गई आज से शायद 5 साल पहले की, या इससे भी ज़्यादा हो गया है। आपको तो एक दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि सिंगापुर में गाड़ी रखना जुर्म है। गवर्नमेंट मुँह से कहती है मत रखो, और अगर जहाँ 1 रुपया लगता है वहाँ 10 रुपये चार्ज कर रही है कि हम कहते जो हैं कि गाड़ी ना रखो तो क्यों रखते हो, क्या करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलो। क्यों? कि आपके मुल्क में पोल्यूशन बढ़ रहा है। नॉर्वे दुनिया का सबसे साफ और खूबसूरत मुल्क होगा मेरे ख्याल में, और इसको दुनिया में इस वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आया है, पिछले सालों में तीसरे चौथे पे। ये लास्ट फ्यू मंथ्स अगो क्या हुआ पता चला कि कल हम स्कूल में आएंगे, सिस्टर्स बातें कर रही थी आपस में, दो तरह की गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं, अब एक तो इलेक्ट्रिक चलनी शुरू हो गई, दूसरी गैस की थी। जिन सिस्टर्स की गाड़ियाँ गैस की हैं वो आपस में बात कर रही थी कि कल हमारे आने जाने में प्रॉब्लम होगा और कल लोकल बसें नहीं चलनी भी, क्यों क्या हुआ। कहने लगे कि गवर्नमेंट ने फिगर्स एंड फैक्ट्स किए हैं कि हमारे इस साल जो स्नो आनी थी वो भी नहीं आई, तो जो उसकी वजह से जर्म्स मरते हैं वो नहीं मरे, तो डीजल की गाड़ियां शहर में जाएंगी तो उससे बीमारियां फैलेंगी। एक दिन पूरे मुल्क में डीजल की गाड़ियों को बंद करें ताकि हमारा पोल्यूशन का लेवल ठीक हो। हम मरे गरे कहाँ गए, हम कहते मिट्टी हो ये ना पालो सिर्च। याद रखिए जिंदा कौमें अगली प्लानिंग करती हैं, हम छोटे छोटे कामों पर जीते हैं। आज आप सब जाकर अपनी अलमारियों में से वेडिंग ड्रेसेस गिने, पार्टी ड्रेसेस गिने, आपके पास कितने फैंसी जोड़े हैं, कितने शादियों वाले जोड़े हैं, फिर आपके पास कितने रेगुलर वेयर हैं, कितने गर्मी वाले, कितने सर्दी। आप जाके सिर्फ घर में आज खुद हासिबो कबलन तो हासिबो, और कपड़े पहनना बुरी बात नहीं पर कपड़े बना बना के अलमारियों में उनको हैंग करना बहुत बुरी बात है। देने को दिल नहीं करता और बनने बगैर छुटती नहीं है जान। अभी एक फैशन के मुश्किल से अपग्रेड किया तो फैशन बदल देंगे। अच्छा जी आपने ये पहना है और ये तो पिछले साल का प्रिंट है, भाई आप कितने साल पुराना प्रिंट है? आप कहते हैं इस पुराना प्रिंट पहनूं तो आपका प्रिंट कितना पुराना है? आप तो 50 साल पुरानी हो चुकी हैं। आप मुझे बताइए आसमान कितना पुराना है। इस वक्त हमारा ये प्रॉब्लम है, ब्रांड कौन सा है और नाम कौन सा है और मोहर देखते हैं। देखिए जिंदा कौमें ऐसे काम नहीं करती। एक जोड़ा अमेरिका में वेडिंग ड्रेस के नाम पर किसी जगह बिकता नहीं है, किराए पर आता है, उसको पहनने का खर्चा और एक दफ़ा की ड्राई क्लीनिंग का खर्चा देना है लोगों ने। वो जोड़ा शायद 100 दुल्हनों ने बार बार पहना है, फिर दोबारा उसी शोरूम में जाना है। आज सिर्फ आप अपने इन जोड़ों की एक एज्यूम्ड प्राइस गिनिए, कैलकुलेटर ले लें, अपनी वार्डरोब खोल लें, ये जोड़ा कितने का बना था प्लस, कितने का बना प्लस प्लस प्लस। आपकी सिर्फ उस वार्डरोब में हो सकता है 10-20 लाख रुपये के कपड़े हों, जिसको अब आप पहनने को तैयार नहीं, चूँकि आपके तन पे आ गया तो कोई लेने को तैयार नहीं, कौन खरीदेगा? और फ्री आप दें क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करके एक जोड़ा बनाए और एक दफ़ा पहन के छोड़ दूँ? बी रियलिस्टिक, कुछ करें, रिसाइकलिंग करें, दूसरों को दें। आपके ख़ानदान ने आपके पहन लिए, दूसरे ख़ानदान वालों से आप ले लें, आप अपनी दोस्तों के ले लें, वो आपके ले लें, लेकिन कुछ करके चेंज भी लाएँ तो पॉजिटिव चेंज लाएँ, क्योंकि जो इतना माल इन चीज़ों पर लगता है कल हिसाब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी मेरी इस्लाह फरमाए, सबसे पहले मुझे इस पे अमल की तौफीक दे। और इसका सिंपल तरीका, एक नया तो एक पुराना गया, अच्छा फैंसी जोड़ा एक मिल गया, फैंसी एक दे दीजिए, लॉन का एक नया जोड़ा बना, लॉन का दे दीजिए। ये आसान तरीन तरीका बता रही हूँ, अगर आपने हमेशा ही अच्छे पहनने हैं तो बहरहाल नेमतों को बनाइए फिर पहनिए, कपड़े बनाए तो पहने, जेवर बनाए तो पहने, जूते बनाए तो पहने, और अगर सिर्फ रखने हैं तो सुम अलतुसलुन यौम इज़िन अनिन नईम। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।